जैसे ईंट नेवे में निभाड़े में पकती है, ऐसे लिक्विड माँ का रज और पिता का वीर्य। उस लिक्विड को पकाते पकाते हड्डियों वाला शरीर और खोपड़ा बनाया प्रकृति ने, तो कितना निभाड़े में तो ईंट 4-6 दिन तक पकती है, हम हजूर 10-10 महीने 9-9 महीने 8-8 महीने पक के आए, और फिर ये मर जाएगा, इतनी पक्की बात है। तो इसका सदुपयोग कर लो, मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बस सत्य वो अच्युत है, उसको पालो। आपके पास वो बुद्धि दी है अच्युत ने। पेट भरना, बच्चे पैदा करना, दुख आए तो भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, इतना तो कुत्ता घोड़ा गधा बिला पशु सब जानते। आप पढ़ लिख के भी इतना ही किया तो आपने अपने साथ धोखा किया भैया। वाहवाही हुई, सीट बनी रहे, हम मौज में है, लेकिन सीट चली गई, वाहवाही चली गई, तो आप दुखी हो जाएंगे ना भैया। सब अनुकूल है, मजा है, लेकिन थोड़ी प्रतिकूलता होगी तो मजा चली जाएगी ना। हम तो चाहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये आती जाती रहेगी, लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचो कि आपके आगे खिलौने हो के चले जाए, आप उस खिलाड़ी के साथ अपना दिल मिलाकर जिए। बस बहुत ऊंची बात है और बहुत सरल है, सहज है। सिद्धियां पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये करके उसमें मेहनत है। छाया पुरुष को बनाना हो उसमें मेहनत है, अच्युत की शरण में मेहनत नहीं है, और उन सबसे ऊंच पद पे आप पहुंच जाएंगे। विवेकानंद ऐसे सज्जन के पास गए थे तो प्रसिद्धि थी, तो तब उस आकाश में हाथ घुमाकर वस्तु देने वाले साधु ने विवेकानंद को प्रभावित करने के लिए जो मांगते गए वो देते गए, तो करीब उनके हॉल का एक कोना ढेर हो गया वस्तुओं का। विवेकानंद ने कहा कि मैं मांगता गया वो देते भी गए, आकाश में हाथ घुमाते, और उनके वो जगह का कमरे का एक कोना में ढेर बड़ा खासा हो गया। फिर भी भाइयों, परमात्मा प्राप्ति के आगे इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं अखंडानंद की बात करता हूं ना, कि किसी साधु के पास गए थे, वो मन चाहे चीज दे देते दे थे, तो रात को 10 बजे गए, हम बोले क्या खाओगे, बोले मालपुए खाएंगे, बोले रात को 10 बजे मालपुए, अच्छा तो बातों में रखा और संकल्प किया। फिर यूं हाथ घुमाए तो हाथ में तसला आ गया, 10 आदमी खाए उतने मालपुए। अखंडानंद अपने आश्रम में आए थे अहमदाबाद, इस मोटे आश्रम में मोक्ष कुटिया में बैठे थे साथ में, और पत्रे वाला हॉल था, वहां सत्संग भी उन्होंने किया था। ये अखंडानंद जी का अनुभव, किसी पूर्वकालीन अनुभव नहीं, इसी युग का। फिर अखंडानंद जी बोलते हैं उनके प्रवचन के द्वारा, पुस्तक में भी ये बात है, और मैंने ये पुस्तक से सुनी है, उनके मुख से नहीं सुनी, पुस्तक से सुनी। बोलते हैं कि हमने ये मालपुए खाए, हमको स्वाद भी आया मालपुए का और नींद भी आई। सुबह जब हम लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए, आप समझ गए ना, तो हरिजनों की बस्ती में दो माइयां बुरी तरह लड़ रही थी, चिल्ला रही थी, तो एक हरिजन भाई ने कहा कि रांड बरातियों के यहां से 10 आदमी खाएं उतने मालपुए में मांग लाई थी, और तू सब जो कुछ मेरे घर में देखती है, कैसी तेरी नजर है रांड, तू चोर। वो बोलती है मेरे अपने खुगलू की कसम है, अपने फलाने बेटे की कसम है, जो मैंने तेरे माल पे उठाएंगे तो तूने नहीं उठाए तो रांड क्या भूत ले गए। अखंडानंद कहते कि हमको बड़ी ग्लानी हुई, अब कैसे उसको कहे कि हाँ हमारे पेट में है मालपुए। वे मालपुए तो खाली करके आए हम, लेकिन महत्राणी के घर के मालपुए भूत उठा के दिया, वो ग्लानी अभी तक नहीं आती। तो ऐसे चमत्कारों में साधक लोगों को प्रभावित होना ईश्वर से दूर होने के सिवा और कुछ नहीं। आप विरोध किसी का ना करो, अच्छा है, उनकी विद्या है, धन्यवाद है, हम सभी से प्रेम करते, लेकिन ऐसी चीजों से हम प्रभावित नहीं हो पाते। ऐसे सज्जन न जाने क्या क्या चीज हमको दिए थे। हमने कहा नहीं, हो गया बस। बोले लो रखो, मैं कहा नहीं नहीं, 5-7 तो लेके थे। हम छोटे थे, हमने इन्हीं आंखों से देखा था कि मदारी आते थे हमारे पिता के दुकान के बाहर जो मैदान था, डुक 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 करके अपना खेल दिखाते थे। बतक लकड़े की डालते थे और छान मिला के पानी मिला के बोले चाय बनाते हैं। फिर चाय क्या बनाते, गोबर वाला पानी बनाते थे, फिर उसमें बतक डालते और फिर यूं ढोलक बजाते तो बतक नाचती पानी में। तो होता क्या है, घोड़े का बाल होता है और वो बंधा हुआ होता है, तो ये ढोलक बजाते तो घोड़े का बाल दिखेगा नहीं और वो बतक ऊंची नीची होगी पानी में, और हम समझते थे कि बतक को नचा रहे वहां भी, और लोगों से पैसे उगराते थे और मिल भी जाते पैसे। फिर वो बोलता है ठहरो मैं तुमको रसगुल्ले खिलाता हूं, और पानी पी लेता गोल गोल पत्थर के रसगुल्ले सालिग्राम जैसे निकालते। अब रसगुल्ले निकल के निकालो तो आपकी मर्जी की बात है, सुवर्ण निकल के फिर निकालो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन उन सुवर्ण के रसगुल्लों को शिवलिंग मानकर मुक्ति होना ये हम नहीं मान सकते। जयराम जी की भक्ति सिद्ध महापुरुष होते हैं, योग सिद्ध महापुरुष होते हैं, तत्वज्ञान सिद्ध महापुरुष होते, लेकिन मुंह से रसगुल्ले निकाल के कोई सिद्ध महापुरुष हो गया ऐसा हमारे शास्त्र में हमने नहीं सुना माना। हम प्रेम सभी से करते और रसगुल्ले वालों से भी हम प्रेम करते, क्योंकि अपना ही आत्मा है, उनमें सज्जनता है, सद्गुण है, और सारे बहुत सारे सद्गुण भी होते, समाज सेवा आदि है, उनका हम स्वागत करते। लेकिन ये आप ये देख लोगे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, अथवा मैं भगवान हूं मेरे को देख लिया आपका मोक्ष हो जाएगा, इस बात में हमारा मन नहीं मानता है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों नहीं बोले कि देख मेरे को देख ले तेरी मुक्ति हो जाएगी, चल युद्ध कर। नहीं, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते उसके बुद्धि में मैं अपने अच्युत स्वभाव का योग दे देता हूं। आए है कृष्ण, तभी तो तुम्हें प्रणाम करने का दिल होता है, तभी तुम्हारी गीता के आगे सिर झुक जाता है, हृदय झुक जाता है। कैसी गीता है, कितनी माता है माता। माता तो एक जन्म में दूध पिलाती है और मरने वाले शरीर को, और गीता माता तो हमारे मैं को अच्युत का ऐसा दूध पिला जाती है कि हम स्वयं अच्युत हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो मरता है वो हम नहीं है, जो दुखी सुखी होता है वो हम नहीं है, जो राग द्वेष करता है वो हम नहीं है। राग द्वेष बुद्धि में होते हैं, मरता शरीर है, दुखी सुखी मन होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों में होती है, और हम खाम खा परेशान हो रहे थे। हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप, शिवो हम आनंदो हम। जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है वो मेरा आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न बंधु। ये बंधु माता पिता सब शरीर तक है, मेरा आत्मा परमात्मा अच्युत का एकाकार अविभाज्य अंग साक्षात्कार हो जाता। अगर कठिन होता साक्षात्कार तो परीक्षत को 7 दिन में कैसे होता, कठिन होता तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में हाथी चिखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे हैं और शत्रु सेना एक दूसरे से प्रतिशोध की आग में तप रही है, खून की प्यासी थी। तो अर्जुन को उपदेश सुनते सुनते ही कृष्ण ने ऐसे प्रश्न अर्जुन के दिल में उठाए, जब प्रश्न उठते हैं और फिर उत्तर मिलता है तो बात बैठती है। प्रश्न मनुष्य के स्वाभाविक जन्मजात स्वभाव, बच्चा है कोई सिखाता नहीं ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या, मैं क्या हूं वो बेचारा पूछे, उसके पहले ही उसके ऊपर नाम थोप देते, तेरा नाम गोबर गणेश है, तेरा नाम ममता है, तेरा नाम फलान, तू फलाना है। वास्तव में ये थोपा हुआ है, तू इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख की शरण नहीं जाना चाहिए। आपको शरण तो लेनी पड़ती है, जीव किसी न किसी की शरण जाता है, लेकिन हीन की शरण जाओगे तो जैसे मंत्रा की बात मानने से कई कई का बुरा हाल हुआ, कई कई की बात को वचन दे बैठे हुए दशरथ को दुख बुरे देखने पड़े। हमेशा ऊंच की शरण जाना चाहिए, और ऊंच में ऊंच तो अच्युत है, उससे बड़ा ऊंचा कोई नहीं, उस परमेश्वर से बड़ा मुझे कोई दिखता नहीं। अपनी अपनी जगह पर सब बड़े हैं, लेकिन उनका बड़ापन उस अच्युत की सत्ता से। कोई धन में बड़ा, कोई सत्ता में बड़ा, कोई किसी में बड़ा, कोई किसी में बड़ा, लेकिन उनके हृदय की धड़कने तो उस अच्युत की सत्ता से चल रही है। तो प्रहलाद उसकी शरण थे अच्युत की, और हिरण्यकश्यप अहम की शरण थे, विभीषण उस अच्युत राम की शरण थे, जो रोम रोम में रम रहा है उस अच्युत का नाम ही राम रख दो, तो राम की शरण थे। और रावण, मैं लंकापति रावण तो बात चली थी, मकराक्ष ने रावण को पकड़ लिया। आगे ने अपनी जगह पर तो रावण की प्रेयसी बाद में यज्ञ की बलि होगी, पहले तू होगा। रावण ने कहा, देख मकराक्ष, तू मेरी बलि दे दे, अब तू छोड़ेगा नहीं, मैं हां बोल देता हूं, लेकिन एक काम कर, मैं जरा पाठ कर लूं थोड़ी अपनी सदगति के लिए, मेरा अपना पाठ पूरा हो जाए फिर तू मेरी बलि दे देना, इतना तो तू मेरे को। मकराक्ष, राक्षसों में भी दया रहती है, राक्षसों में भी प्रेम रहता है, बुरे से बुरे आदमी में भी प्रेम रहता है, गंदे से गंदे आदमी में भी अच्छाइयां छुपी रहती। रावण जरा दैन्य भाव से बोला तो उसके आम को पोषण हो गया। मकराक्ष ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ये तेरी जो प्यारी प्यारी ललना है सुंदरी, मंदोदरी के होते हुए भी इसको रखा है रांड को, हाँ वो तेरे सामने उसकी बलि देंगे तो तेरी बलि से तेरे को पीड़ा होगी, उससे भी ज्यादा तेरी मानसिक पीड़ा तो दूंगा तेरे को। हाँ, यज्ञ की लपटें चल रही है और रावण मन देख रहा है, और उसकी चोटी घसीट के मकराक्ष उसका है मुंडी पकड़ता है और आज्ञा देता है कि चले चले, मुंडी आ देख ले अपनी प्यारी का सिर फेंक दी यज्ञ में, शरीर को उठा के फेंक दिया। तो रावण को मर जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना वो क्रोध हुआ, क्योंकि काम अगर पूर्ण नहीं होता, कामना कामना पूर्ण करने में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध आता है, तो क्रोध अग्नि से जलने लगा रावण। और वहां सामने यज्ञ अग्नि का धुआं वो भी जला, लेकिन रावण में चतुराई थी, शिवजी का भक्त तो था, तो पाठ लंबा करते समय के कारण रावण के असुर लोग, रावण की सेना के लोग आ गए और मकराक्ष की ऐसी तैसी कर दी, रावण निर्बंध हो गया। तो प्रार्थना और पाठ कितने कितने खतरों से बचा देता है, फिर भी रावण को यज्ञ की तापने और क्रोधाग्नि पीने ही पड़े, क्या करें, उस ताप ने रावण को ऐसा तप्त रोग कर दिया, सूखा रोग कर दिया, कि रावण बहुत इलाज करने के बाद भी रावण की गर्मी शांत नहीं हुई, तपन शांत नहीं हुई। तब भगवान शिव जी की आराधना की और शिव जी प्रकट हुए और रावण को जो उपाय बताया, मैं वो उपाय तुम्हें सुना देना चाहता हूं। तो अगर शरीर तपने लग जाए, आंखें जलने लग जाए या क्रोध पी पी के तपन आ रही है, तो शिव जी ने कृपा करके रावण को जो बताया, ऋषियों ने कृपा करके वो जो शास्त्र हमारे लिए संजो रखे, तो शिव जी की कृपा और ऋषियों की कृपा की मैं खाली प्रसादी बांट रहा हूं, ये मेरा अपना आविष्कार नहीं है। क्या करना है कि जीभ को कौवे की चोंच की नाई गोल घुमा के बाहर कर दिया शुद्ध हवा में, फिर जीभ के द्वारा श्वास खींचना है और घूंट भर के पीना है, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी मासिक स्राव होता हो। डॉक्टर बोले नहीं बचेगा, रक्त स्राव बंद नहीं होता, एकदम जात दो दवाइयां गोलियां इंजेक्शन सब बां पुकार गए, फिकर नहीं, बस यूं किया। और भूख प्यास सताती और आपको खाना और पानी नहीं पीना है, तो इसका अभ्यास करके वायु पीकर आप जी सकते हैं। वायु पीकर जीने वाले जोगियों के साथ मेरी दोस्ती थी, पेड़ पे ही रहते थे। मैं ऐसे बापूजी नहीं बन गया हूं, बहुत मैंने पाप पड़वेले, बहुत बहुत संतों का संपर्क किया, अगले जन्म का जो था, लेकिन इस जन्म में भी अच्छे अच्छे महापुरुषों का खूब प्रसादी मिली है मेरे को। मैंने हाथ की हथेली रगड़ी, मन में ओम ओम जपना है या राम राम, उसका अपना प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का अनुवाद नहीं होता है, उनके उच्चारण की कौन से केंद्र पर क्या असर पड़ती है वो अनुवाद से नहीं पड़ेगी। अगर हृदय की तकलीफ है तो हृदय पर हथेली के तरंग भेजो, अगर आंखों की तकलीफ है तो आंखों पे अगर और जगह है, पित्त के कारण और एसिडिटी के कारण भी हार्ट अटैक 95% तो ऐसे ही होता है, पित्त और एसिडिटी के कारण, वायु के कारण 5% सचमुच में हृदय दौर्बल्य के कारण होता है। लालजी महाराज को कई बार हार्ट अटैक आए, लेकिन हार्ट देखा तो 16 साल के युवान जैसा, तो पित्त की तकलीफ है, धूप में ज्यादा बैठते और कभी खा लिया दही, चलो भाई अब क्या मेहनत करना, रोटी बोटी मत बनाओ, लड्डू है ना, लड्डू और दही खा लिया, अभी इस उम्र में लड्डू और दही खाया, शाम का समय था, एसिडिटी हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती। तो ये तो क्या खाना है इसका भी ज्ञान बाल्यकाल में आयुर्वेदिक ढंग से स्कूलों में पढ़ाना जरूरी है, तो इससे बीमारियों से बड़ी रक्षा होती है। जैसे ये सीजन में बता रहा हूं ना कि अभी नीम के पत्ते और ये सब आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूं, तो ये बचपन में हो तो आप इतने बीमार नहीं हो सकते। तो अपने देश में आयुर्वेदिक विभाग का हिस्सा अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसका प्रचार आम ढंग से होना चाहिए, तो फिर ये कैप्सूल इंजेक्शन और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कभी कभी बेईमान जो डॉक्टर है वो बहुत जुल्म करते। एक बच्चा भी 3 दिन पहले ले आए मेरे सामने, बोले डॉक्टर ने बोला कि उसकी पेशाब की इंद्री पर पर्दा है और किडनी पर सूजन है और दिमाग में ब्रेन हेमरेज। बापू आपने कहा कि नहीं कराना अबॉर्शन और सब ठीक हो जाएगा। बापू आपकी दया से बच्चा ठीक हो गया। मैंने कुछ नहीं किया है, बच्चा ठीक ही था। डॉक्टर ने लूटने के लिए तुमको डरा दिया और तुमको वो एंजियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी देखकर तुमको तो पता ही नहीं कि ये क्या होता है। वो तुमको जैसा भिड़ा देते हो, मशीन में ऐसा आया है ऐसा है। तो ऐसे लुटोरों से समाज जब लूटा जाता है तो मुझे डॉक्टरों के प्रति नफरत नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो लूट की मनुष्यों को शोषण की जो वृत्ति है उसके प्रति मेरे हृदय में व्यथा हो जाती। नफरत मेरी किसी से नहीं, मैं किसी से नफरत करूं तो मेरे को ही घाटा होता है। मेरी गुफा में सांप आ जाता था, मेरा पैर पड़ गया, उससे मेरी नफरत होती तो मुझे काटता। बड़े खतरनाक सांप रहते हैं आपू की पहाड़ियों में, एक बार जरा सा काट दे तो फिर पानी मांगना मुश्किल है। और रीछ भी ऐसे रहते कि कई आदमियों को झपेट दिया। रीछ और सांपों के बीच हम रहे, हालांकि रीछों के बीच ज्यादा दिन तो नहीं रहना हुआ, लेकिन कई वर्षों तक रीछों की आवाज तो सुनते। और आमने सामने रीछ एक बार मिल भी गया, मेरे को कुछ नहीं किया। सुबह 4 बजे आवाज आ रही थी एकदम नजीक से, तो मैं गया चलो, फिर मैं गया देखे उसको, यूं पसार होके गया। बस ये कैमरा वाले हैं ना, उनसे थोड़ा दुगनी दूरी पर हम वहीं से गए। वो जा रहा था, न उसको भय था मेरे से, न मेरे को उनसे भय था। अगर मैं उनसे डरता तो भी गड़बड़ होती, अगर वो मुझसे डरते तो भी डरता। जब सब में अच्युत है तो क्यों डरना, क्यों डराना। आप डरो नहीं, किसी को डराओ नहीं। दूसरे को डराओगे तो आप जरूर डरोगे। आप किसी को ठगो नहीं, अपने को ठगवाओ मत। आप किसी को बेवकूफ मत बनाओ और किसी से बेवकूफ मत बनाओ। तो जो सोनोग्राफी के द्वारा अथवा दूसरे सलाह के द्वारा मरीजों का शोषण करते हैं, ऐसे डॉक्टरों को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो शोषण का पैसा आपकी बुद्धि में जो योग्यता है उसको हर लेगा, आपके बच्चे बच्ची और कुटुंब में जो शांति है उसको हर लेगा, फिर आपको दारू पीकर नींद करनी पड़े ऐसा क्यों करो भैया। आपको इंजेक्शन लेकर सोना पड़े ऐसा क्यों करो। आपको बाटले चढ़ाने पड़े ऐसा क्यों करो भैया। आप बापू की नाई मस्त रहो ना, मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। मैं तो मेरे सत्संगियों को भी बोल देता हूं कि तुम इतनी सारी व्यवस्था में आकर बैठे हो तो किसी ने जो सेवा की है तो तुम मुफ्त का माल तुमको पचेगा नहीं, तो कम से कम युवा धन पुस्तक ले जाना बांटना। मेरे को नहीं चाहिए तो कुछ न कुछ सत्कर्म तुम करना ताकि मुफ्त का माल ना रहे। क्यों ना हक का खाना। अपने आश्रम में कोई बोलता है हमें या अन्न देना है, दान देना है, गाय देनी है, चारा देना है, मैं कहना नहीं, हमारे आश्रमवासी बच्चे दान का नहीं खाते, बच्चियां भी दान का नहीं खाती, बेटियां चूर्ण बनाती है और उस बाजार में इतना सस्ता मिलना संभव ही नहीं है। इन बच्चियों की सेवा से भगवान का सुमरण वाला अनुष्ठान वाले वाइब्रेशन वाला चूर्ण लोगों को लाभ करता है और इनको सेवा मिल जाती है, खर्च निकलता रहता है। ऐसे बच्चे भी बहुत सारी ऋषि प्रसाद की ये वो सेवा करते हैं। हमारे आश्रम में चीज वस्तु दान घी तेल हम नहीं लेते, बाजार से खरीदते। अगर हम दान स्वीकार करें तो यहां हम रोज 50,000 आदमी को खिलाएं तो भी न खूटे, इतना आ सकता है। फिर भी शिविरार्थियों को भी दान का माल खिला दे हमको अच्छा नहीं लगता, तो समिति वाले 3 टाइम खाना पीना रहना 30-35 रुपया व्यवस्था जो रखते हैं बिल्कुल नॉर्मल। कौन अहमदाबाद में 3 दिन रहने देता है 30-35 रुपया रोज का, या 40 रुपया 35 रुपया जो भी होता है, 3 टाइम खाना पीना रहना कौन देता है। फिर भी समिति दे रही, जहां भी जाते शिविर करते तो समितियां आयोजन कर देती है, उसमें से भी कुछ बच जाता है तो भंडारा छाछ केंद्र चलते वो चलते। अभी जप यज्ञ चला रहे हिंदुस्तान में कई जगह पर, बेरोजगार योजना चलाई हमने, हमने ही बोला आश्रम को समिति, तो जहां कुछ बेरोजगार बुढ़े बुढ़ियां अथवा बेरोजगार लोग हैं, कीर्तन करें, दोपहर को भोजन करें और शाम को अपनी दानगी ले जाएं। अभी कई जगह पे चल रहा है, यहां चालू करवाया, कल रिपोर्ट आया कि 400 आदमी है, तो 100 आदमी का तो वहां गरीबी बहुत है, तो 20 रुपया देते। मैं क्या 22 कर दो उनको, फिर 25 करवा दूंगा, अथवा तो अभी 20 दो, बाकी का उनको 5-5 रुपया मन में ठान लिया, फिर एक साथ उनको कंबल वस्त्र ये दे के बोनस करके दे देंगे ताकि उनके काम में आए। जब ज्यादा ढेर रखते तो टेंशन होता है, चिंता होती है, फिर भी हम निकालते जाते और न जाने कैसे आता रहता है। दिया जितना जितना जलता है उतना ऑक्सीजन अपने आप भागा भागा आता है, पतली हवाएं होकर जितना जितना ऊपर को उड़ती है तो बाकी की ठंडी हवाएं वो जगह भर लेती है। ये अच्युत का सिद्धांत है, उसका मैं बहुत फायदा उठाता हूं। दिल्ली की कोई बड़ी पार्टी ने मेरे को कई खत लिखे, आप ये आदिवासी भंडारे करते या ये जो दान पुण्य करते उसमें हम सेवा करना चाहते। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, आज तक मैंने उसको उत्तर नहीं दिया, बुलाया नहीं, लिया ही नहीं, लेना ही नहीं, तो फिर काय को झंझट करे, अपने आप बड़े आदमी थक जाते उत्तर नहीं दो तो। दूसरा कोई होता तो उनको अपना आदमी भेजता, उनकी खुशामद करता, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देता, लेकिन हमारे पास ऐसी योग्यता नहीं है कि कोई सेठ को कोई बड़े आदमी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे दे। प्रेम दे सकते हैं लेकिन खुशामद करके उससे कुछ लेने का हमारा मन इतना बेईमान नहीं है। जयराम जी की भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से अभी इतनी संसार की लोलुपता नहीं है कि हम सेठों की खुशामद करें। प्रेम करते समिति वालों को भी, प्रेम करते सबको प्रेम, और प्रेम में ताकत होती है। डांटने गया बच्चा वीआईपी नॉट अलाउड, वो वीआईपी बुरा नहीं मानते अगर बुरा मानते तो वीआईपी कहे कि हमारे वीआईपी नहीं है, फिर खुशामत करो के वीआईपी नारायण 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 बोले हमारी गाड़ी नहीं आने देते, हम इतने इतने डायरेक्टर हैं, इतनी बैंकों के फलानों ढिंगनों, कौशिक वाणी ऐसा करते वैसा करते। भाई गाड़ी तुम्हारी, तुम बड़े आदमी और तुम्हारी गाड़ी आए तो ये जो बैठे हैं वे भी छोटे नहीं है हमारी नजरों में, तो ये स्कूटर वाले भी बड़े हैं, साइकिल वाले भी बड़े हैं, किस किस की गाड़ी आने देंगे, फिर गाड़ियों की जगह रखेंगे कि सत्संग की जगह रखेंगे। इसलिए आश्रम में जो जरूरी गाड़ी आती है मेरी गाड़ी को जरूरी है, नहीं तो मेरे को लोग पैर पकड़ के परेशान कर देंगे, नहीं तो मैं भी पैदल आना स्वीकार कर लूं। कल भी मैं यहां पैदल आया था, गाड़ी थी यहां आ सकती थी गाड़ी, फिर भी मैं पैदल आया क्योंकि यहां पैर पकड़ने वाले लोग नहीं थे, तो मैं पैदल आ गया। गाड़ी में आने से आदमी बड़ा हो जाता हो तो सारे ड्राइवर तुम सबसे बड़े हैं, ऊपर बैठने से आदमी बड़ा हो जाता है तो चिड़िया और गिद्ध सबसे बड़े हैं। जयराम जी भाई बड़े में बड़े अच्युत से पीर्ति करने वाले की चरण रज भी बढ़िया है, हमारे भाग्य को बढ़िया बना देती है। तो मकराक्ष को बताया श्री शंकर भोला बाबा ने, क्या शीतली प्राणायाम इसको, पित्त की तकलीफ इससे ठीक हो जाती। जो लोग लंबे श्वास लेते हैं, खूब लेते खूब छोड़ते हैं, उनके रोग के कण तो ठीक हो जाते, लेकिन नियम न करने के बाद रिएक्शन होने की बुढ़ापे में बड़ी संभावना हो जाती। तो जरा जानकारी करके जो भी कुछ करते, हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, सब अपनी अपनी जगह पर, लेकिन योग को अच्छी तरह से समझो, प्राणायाम का फायदा लो, लेकिन टेम्पररी फायदा लिया और बाद में आपका मगज चकराने लगे, मासिक ज्यादा हो गया, खुशकी चढ़ गई। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि हम मासिक नहीं गए, ऐसा हो गया हमारे, ऐसा हो गया। तो मैं उन सज्जनों को भी बताया कि आपके लोग इधर भी आते हैं, आप जरा ऐसा ऐसा, बोले बेवकूफ लोग हैं ऐसा करते हैं, तो हम उन बेवकूफ लोगों को भी हम बेवकूफ नहीं मानते क्योंकि वो हमारे अच्युत का ही विक्रय है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप मध्यम मार्ग अपनाएं, अति प्राणायाम नहीं, अति उपवास नहीं, अति भूखामारी नहीं, अति खाना नहीं, हफ्ता में एक दिन उपवास, 10 प्राणायाम, 1 मिनट रोकना, और 40 सेकंड बाहर, इससे बहुत सारी बीमारियां भाग जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, वो चार दिन में फूं फूं करके आप भगाओगे, इसमें 10 दिन लगेंगे, लेकिन ये आप लंबा आयु से जी सकते और खतरे से सुरक्षित रहेंगे। मैं उनका किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिएक्शन ना हो ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। नारायण नारायण नारायण। आंखें जिनकी जलती हो इस सीजन में, जो नंगे सिर घूमते हैं, वे अपने बुढ़ापे में बहरास को बुला रहे हैं, अपने आंखों को जल्दी कमजोर कर रहे हैं। जो नंगे सिर घूमते हैं धूप में, सुबह के आधा घंटे की धूप के बाद कोई भी धूप में घूमता है नंगे सिर, तो समझो वो अपने आप शरीर का दुश्मन बन रहा है। आंखें जलने लगेगी। शीतली प्राणायाम करो 2-5 दिन, ज्यादा करोगे तो फिर शीतली का ठंडक बढ़ जाएगी, पित्त कम हो जाएगा तो भूख कम हो जाएगी। जब तक गर्मी गर्मी लगे तब तक शीतली करो, जब सर्दी लगे तो सूर्य नाड़ी का करो, गर्मी लगे तो चंद्र नाड़ी का करो, मैं तो फिर छोड़ दू। ऐसे नहीं रोज फूं फां करते रहे, और जिनकी आदत हो जाती है एक दिन नहीं करे तो बीमार पड़ जाएंगे। बकरे को निकालते और अब ऊंट का चारा रोज खिलाओ, बकरी खा गई थी थोड़ा चारा, उसको भगाने के लिए जरा दरवाजा नीचा कर दिया था, ऊंट घुस गया। अब ऊंट ऐसा घुस गया कि गले पड़ गया हमारा, जब खाए जा रहा है। इसीलिए बड़ा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता, तो बुद्धि कहां पुष्ट होगी। तमेव शरणं गच्छ, त्वमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत,
सर्वभावेन भारत,
तत्प्रसादात् परां शान्तिं,
तत्प्रसादात् परां शान्तिं,
स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्,
स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्।
तो शरीर से जो करे, मन से जो चिंतन करे, बुद्धि से जो निर्णय करे, चित्त से जो चिंतन करे, वो सब तू मुझ अच्युत आत्मा परमात्मा के अनुरूप कर, तो तुझे परम शांति मिलेगी। क्या पहलाज की शांति है। कई चीजों की बखान कर रहे हैं, पहलाज का मन ललचाता नहीं है। द्वेष का व्यवहार कर रहे हैं, पहलाज का मन उद्विग्न नहीं होता। राग की वस्तु की बखान कर रहे हैं, पहलाज दूसरे बच्चों की नाई किसी चीज को पकड़ते नहीं। जिसे पकड़ा जाता है उसी में शांत आनंदित रहते हैं। पहलाज इतने महान हो गए उस अच्युत के ज्ञान सुमरण और प्रीति से कि पहलाज का दर्शन जिनको होता था वे भी आनंदित हो जाते, उन्हें भी शांति मिलती थी। देवता लोग भी वेश बदलकर दैत्य पुत्र का दर्शन करने आते। ऐसी है अच्युत की भक्ति, ऐसा है अच्युत में शांत होना। चलो अब बैठो, पलथी मार के गर्दन सीधी, कमर सीधी, श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, अंदर जा रहा है, उसको देखो, बाहर आ रहा है उसको गिनो। अब उसमें महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, तो उसमें राम मिला दो, और भाई और बच्चे हों तो उसमें ओम मिला दो। श्वास अंदर गया, ओम। देखो ऋषियों ने कितना विश्लेषण किया है, राम मिलाए और वो ओम मिलाए, क्योंकि पुरुष विचार प्रधान है, महिलाएं भाव प्रधान है, उनके लिए राम शब्द ज्यादा लाभ करेगा, पुरुषों के लिए ओम शब्द ज्यादा लाभ करेगा। है दोनों भगवान के ही नाम, लेकिन किस केंद्र से राम का असर किस केंद्र पे पड़ता है और किस केंद्र पर ओम का असर विशेष पड़ता है। सभी पे पड़ता है, लेकिन विशेष कहां पड़ता है ऋषि लोग जानते। उन ऋषियों की प्रसादी हमको बहुत साथ देती है, बहुत सहायता करती है। ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है, वो मंत्रों के रहस्यों को खोजने वाले हुए हैं, ऋषि तू मंत्र दृष्टार न करता रहा। ओम की महिमा का खोज भगवान नारायण ने की। ओंकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण। राम नाम के महिमा गान करने वाले भगवान शिव जी है। कैसे कैसे देवता, अब उनकी ही रिफाइनरी से रिफाइन जो बात आई वो प्राणी मात्र का भला कर रही। मुसलमान है तो क्या है, उसने पाप कर लिया। ईसाई है तो क्या है, वो भी करेगा तो उसको भी यही फायदा होना होना और होना ही है। कई मेरे ईसाई शिष्य ईसाई साधक है, फायदा होता ही है। मुसलमान शिष्य साधक है, फायदा होता ही है। यहां भी हैदराबाद में भी और जगहों पर पारसी भी है। कई पारसी परिवार दीक्षित है अपने, और कई ऐसे हैं कि पति पारसी और पत्नी और है और दोनों मेरे शिष्य हैं। इस श्वासोश्वास को गिनते जाना। आप टीवी में देखने वाले भी हाथ पैर धोकर ये अभ्यास करोगे तो आपको भी लाभ होगा। श्वासोश्वास को आप गिनते जाना, इसका बड़ा भारी लाभ है। इसका लाभ कितना सारा है वो बोलूंगा नहीं तो समय मेरे पास नहीं है, हमेशा अंतर हो जाएगा। बहुत लाभ है, आयुष्य बढ़ जाएगी, मन की चंचलता मिटेगी, और जब ध्यान करोगे तो 10 गुना प्रभावशाली हो जाएगा। निर्णय शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, सारे सद्गुण विकसित होंगे। 108 तक की गिनती अगर बिना गलती के आप करने का अभ्यास में सफल हो गए, आपको परिवर्तन मालूम पड़ेगा तन में, मन में, बुद्धि में। इतना ऊंचा साधन है। कबीर जी ने इसकी महिमा गाई, माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जो नीचे मन के हैं, जो नीची वस्तुओं के चाहक हैं, वो ऐसे ऊंची साधना नहीं कर सकते, और जो ऊंचे अच्युत के प्यारे हैं वो ये साधना के बिना रह नहीं सकेंगे। नाक के आगे से पर नजर रखी, अथवा भगवान या गुरु या जिसके प्रति आपका आस्था है उसके सामने नजर रखी। कृष्ण है, गणपति जी है, राम जी है, शिव जी है, वैदिक कोई भी देवता भगवान है, वैदिक सनातनी, उसके समक्ष नजर रखी, टिकटिकी लगा के, बहुत फायदा होगा। मैं तो अभी तुम्हारे सामने नजर रख रहा हूं। और तुम मेरे सामने करते होगे टीवी में बैठ के तो तुम्हें भी मजा आएगा, क्योंकि मैं अब अच्युत के साथ मिलकर कर रहा हूं। तुमने नहीं देखा तो देखने वाले को देखने का फायदा उठाओ। रामतीर्थ अपनी पत्नी को बोलते थे कि तुमने नहीं देखा परमेश्वर को तो क्या बात है, मेरे हृदय में प्रकट है, तू मेरे सामने बैठ, मेरे को देखा कर। और उसको बड़ा लाभ हुआ, प्रवचन में बोलते थे। कितने सत्य वक्ता थे रामतीर्थ। मैंने अपनी पत्नी को बोला तो मेरे सामने बैठ के मेरा ध्यान किया कर, अब मैं उसका ध्यान करता हूं, मैं और वो एक हो जाएंगे तो तू फायदे में हो जाएगी। वास्तव में वो और हमें एक थे, हैं और रहेंगे, पता चला उनकी बलिहारी। ये लो, डूबते जाना। जिन्होंने दीक्षा ली है उनको कुंडलनी जागृति का अभी अभी अनुभव भी हो सकता है, बहुतों को हो जाएगा। कुंडलनी जगाने के लिए 12-12 साल की जो छोटी छोटी साधना है, कहीं एक साल की साधना है, वो सब करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही जागृत हो जाती है। प्रार्थना करते जाओ, मैं तुम्हारी शरण, अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यु माम अमृतम गमया। ये मेरी कैसेट देखकर कई लोग गुरु बन जाते हैं और सजेशन करते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। अकोला में भी एक आदमी ने ऐसा खूब चलाया है, बाबू का शिष्य हूं और खूब धंधा चालू किया, पैसे तो लोगों से इकट्ठे कर लिए, लेकिन अब लोग भी बिखर रहे हैं और वो भी बेचारे उलझ रहे हैं, और फिर अखबार में छपवा देते कि बापू ने आशीर्वाद दिया मेरे को। बिल्कुल झूठी बात, कोई मेरे लिए कुछ भी छपवा दे, मैं रदिया का दिया नहीं करता रहता। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है ना, हमारा कैसे यहाँ हाथ और कोई यहाँ हाथ करके कैसा भी फोटोग्राफी करवा देते, कैसा भी छाप देते, छपा देते। लेकिन मेरे शिष्य भी बड़े चतुर होते, किसी के चक्कर में आने वाले नहीं। बरस रही है उस अच्युत की, परमेश्वर की, सर्वेश्वर की करुणा कृपा, तुम उसकी शरण चले जाओ। शरण का मतलब है न किंचित अपि चिंतयेत। जहाज में गाड़ी में बैठे फिर क्या यात्रा करने की चिंता करते कि मैं दौड़ूं तो जरा जल्दी पहुंचूं, अब दौड़ना नहीं, बैठे रहो बस। पायलट जाने उसका काम, जाने मौसम और कहां लैंडिंग कर। रेलवे का इंजन जाने और उसके प्लेटफॉर्म कौन से पर गाड़ी खड़ी रखनी है और सिग्नल मिला ना मिला वो जाने, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ए प्रभु, तुम प्यार करते जाओ बस, बाकी का काम वो जाने और हम जाने। फकीरों की निगाहों से कैसे क्या होता है वो हम जानते हैं, वो भी जानते हैं, तुम भी थोड़ा थोड़ा जानने लग गए। जो कुछ होगा बीच में तो आश्चर्य मत मानना और हक्के बक्के होकर निहारना नहीं, देखो क्या क्या होता है। आनंद है हम उस अच्युत की, उस केशव की, उस राम की, उस शिव की, उस हरि की, उस गुरु की शरण जा रहे हैं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, जो गुरु का गुरु अनादि काल से सबके हृदय का प्रकाशक प्रेरक। अपने तरफ से कुछ कोशिश मत करना और कुछ भीतर होता है तो रोकना मत। ये पागलों की महफिल है, यहाँ चतुर आदमी चकरा जाएगा। मंसूरी मस्ती को लोग बिचारे क्या जाने, साधक की हस्ती को लोग बिचारे क्या जाने। मीरा भाई प्रेम दीवानी। भागवत में श्री कृष्ण ने कहा, वाग गदगदा पानी गदगद हो, द्रवते यस्य चित्तम, चित्त तुम्हारा द्रवित हो जाए। हसती क्वचित कभी हसी उभरी, रुदती भीक्षणम कभी भयंकर रुदन हो जाए। उद्गायंती कभी गान पैदा हो, विलज्ज नृत्यंती चे लज्जा छोड़कर नाचने का भी हो जाए। मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति, ऐसा भक्ति युक्त मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करने वाला हो जाता है। प्रहलाद को ऐसा होता था, गौरांग को होता था, रामकृष्ण देव को होता था, नरेंद्र जी को भी हुआ और विवेकानंद बने। बापू जी आपको? हाँ जी हुआ। आनंद है ओ आओ हो प्रभु जी ओ ओ ओ प्यारे जी ओ ओ ओ मेरे जी। शाबाश। गाड़ी चल पड़ी पटरियों पे, अब स्पीड अपने आप बढ़ती जाए। कहां कौन सी स्टेशन पर रोकना ड्राइवर जानता है। आपकी मुसाफिरी हो रही है, आपको भक्ति करनी नहीं पड़ रही है, योग करना नहीं पड़ रहा है, सब होता जाएगा अपने आप।
तुलसी चिंता क्यों करे,
भजले श्री रघुवीर,
भजले श्री रघुवीर,
प्रारब्ध पहले रचा,
प्रारब्ध पहले रचा,
पीछे रचा शरीर,
पीछे रचा शरीर।
मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, फलाना क्या होगा, संसार कैसी हो जाए, ऐसा हो जाए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटी का, बेटे का, पति का, पत्नी का, मेरा तेरा प्रारब्ध पहले बन गया है। कब रहना, कब खाना, कैसा जीना और कब मरना, किस निमित्त मरना, ये सब पहले से तय हो गया। मैं मर ना जाऊं तो मरने की चिंता मत करो। जब मरना होगा तो मरेंगे, जीना होगा तब जिएंगे। जो धन मिलेगा मिलेगा, जो चला जाएगा चले जाएगा, जो मान मिला सो मिला, जो गया सो गया। भगवान की जो शक्ति है वो माया है। वो क्या करती है, दो प्रकार की, दुष्टों में तो भगवान और संतों की निंदा करा के उनका जल्दी रास्ता साफ करती, और भक्तों में सज्जनों में उनकी सेवा और उनका सत्संग करा के उनको भी जल्दी मुक्त कर देती। भगवान की माया शक्ति के दो कारण, दुष्टों में और थोड़ी दुष्टता का रंग ला के हिरण्यकश्यपु का ठिकाना कर दिया, और प्रहलाद में भक्ति भर के और चमका दिया, रावण को और थोड़ा भड़का दिया गया, कंस को देवकी का आठमा, पहले वाला आठमा कि आखिरी वाला आठमा, नारद जी ने करके कंस की दुष्टता को और गति दे दी ताकि जल्दी ठिकाने लग जाए। तो आप अगर भगवान के रास्ते जाते हैं तो सत्संग के द्वारा, दुख विघ्न बाधा निंदा के द्वारा, दुष्ट तो नरकों में जाएंगे और आपकी घड़ाई पिटाई घुटाई में आप ईश्वर की तरफ ज्यादा जाएंगे। ये भगवान की माया की दो शक्तियां हैं। और कभी कभी भक्त भी भगवान की माया से मोहित हो जाते, और भक्त तो क्या, सती जैसी सती अगस्त आश्रम में गई और अगस्त जी को शिव जी ने प्रणाम कर दिया, तो सती को लगा कि ये क्यों अगस्त जी को प्रणाम करती, ये संत को प्रणाम करने की क्या जरूरत। उस अपराध से सती की मति में राम जी के प्रति भी शंका हो गई, ऐसा मेरा अपना अनुमान है, ये मेरे शास्त्र के आधार पर नहीं बोल रहा। और राम जी अगर आदि नारायण भगवान होते तो हाय सीते करके क्यों जाते, तो राम जी की परीक्षा लेने की हुई, तो शिव जी को कहते कि मैं जिसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अवतार आदि नारायण अच्युत परमेश्वर मानते हैं, मैं उनका दर्शन करने जाना चाहती हूं। तो शिव जी को खटका हुआ, बोले परीक्षा मत लेना, लेकिन उस अच्युत की माया ऐसी कि सती की बुद्धि भी शिव जी की अवहेलना करने वाली हो गई, तो और महिलाओं की क्या हालत, और बच्चों की माइयों की बेचारे की क्या ताकत। शिव जी ने मना किया, परीक्षा मत लेना, और सती आए सीते सीते बन बन डगर डगर उस पगडंडियों की गली गुलियों में हाय सीते सीते कर रहे, और सती ने सीता का रूप धारण करके दूर से दिखाई दी ताकि राम जी सीता सीता समझ के दौड़ के आते हैं कि नहीं आते, अगर आते हैं तो कैसे अच्युत कैसे आदिनारायण, इस हेतु से सती ने सीता का रूप लिया। शिव जी ने किया था परीक्षा मत लेना, परीक्षा लेने को सीता बन गई, और राम जी गए, बोले माता जी आप अकेली क्यों घूमती हो। और फल यह हुआ कि दक्ष के यज्ञ में इस गलती का प्रायश्चित सती को अपना शरीर जला देना पड़ा। ध्यान देना, देवता का शरीर भावमय होता है, पंचभौतिक नहीं होता, और फिर पर्वतीय इलाकों में किसी श्रेष्ठ पुरुष के यहां जन्मी और तप किया, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरहूं तो शंभु न तो रहूं कुमारी, फिर पार्वती कहलाई। तो महाराज जब सती जैसी की श्रद्धा संत के प्रति अथवा अपने पति की आज्ञा के प्रति अवहेलना कर लेती तो साधारण जीव की क्या हाल। तो भाई क्या करें अब? तो आप श्रद्धा की रक्षा के लिए छोटे आदमी की सलामत लो। आप अपने जो दैनिक कार्य है या चिंतन है उसमें हीन की शरणागति मत लो, ऊंच की शरण जाओ। ऊंचे सुलझे हुए महापुरुष के वचनों के अनुसार और ऊंचे में ऊंचे भगवान का जो सुमरण है, प्रार्थना करते करते भगवान सद्बुद्धि दे। तो सद्बुद्धि है कि मन की कल्पना है, वो शास्त्र से सम्मत कर लो। कबीर जी ने अपने शिष्य गरीबदास को कहा, शीश तुम्हारा जाएगा। कबीर के शिष्य गरीबदास कहते, शीश तुम्हारा जाएगा, कर सद्गुरु की भेंट, ये सिर तो चला जाएगा, इसलिए अपना अहम सद्गुरु के चरणों में भेंट कर दो। अहम ही तो राग और द्वेष की खान है और उसी से अनुकूलता प्रतिकूलता और इंद्रिय लोलुपता होती है। जो स्वाद के लिए खाने को आए तो उसी वस्तु को रख के मन को झकाओ तो भी इंद्रियों का आकर्षण हटेगा। गरासियों की कढ़ी मसराम बाबा को अच्छी लगी, फिर याद आने लगी, एक बार खाई तो दोबारा कढ़ी पी पी के वमन करते थे और मन को तोबा करा दी। जलेबी की लालच हुई राजा भरतरी की, दुकान वाले ने कहा साधु हुआ फिर भी जलेबी का शौक नहीं गया, जाओ मजूरी करो कमाओ। मजूरी करके दुआने की जलेबी ली एक शेर लगभग किलो, शेर होता है बंगाली शेर 80 तोले का, किलो होता है 86 तोले का। दिन भर की मेहनत, आज 70 रुपए मिलते, उस समय दुआने मिलते थे, एक किलो जलेबी मिल गई, खाली आंकड़े बदले कमाई उतनी। जलेबी ले गए पुरी का सरोवर किनारे, भिक्षा पात्र में गोबर, गोबर का कोर मुंह में डाले और जलेबी मुंह को दिखा के झका के तालाब में फेंके, ले खा खा जलेबी का शौक, जलेबी की सुगंध आकर मुंह में पानी आया, ले ये जलेबी के रस लेगा तो अंतर का रस कब लेगा, ले हरामी बन। तो इंद्रियां विषयों की खबर देती और मन बुद्धि उसमें ईमानदारी से या बेईमानी से उसको पाने में लगाने की अटकल लगाते। अगर मन बुद्धि में ज्ञान और संयम है तो इंद्रियों को लगाम में रखेंगे और समझ नहीं तो इंद्रियों के पीछे मन बुद्धि लगेंगे और नीच गति को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए ज्ञान की और सत्संग की और नियम की और व्रत की बहुत जरूरत है, वही परमात्मा से मिलाने में सहायक होते। शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए जन की लगे न फेंट। भगवान का नाम स्मरण बढ़ा दो, जम की फेंट नहीं लगेगी। भगवान के नाम का जप रस आएगा तो संसार का इंद्रिय लोलुपता का रस कम होने लगेगा। सतगुरु को कुर्बान जा, अजबल खाए देख। सतगुरु को कुर्बान जा, अजबल खाए देख। पार ब्रह्म परवान है, निरालंबन निज बेश। भंवर गुफा में बैठकर अभी महारस झोंक। सतगुरु के नियमों के अनुसार उसके मंत्र का प्रीतिपूर्वक मानसिक जप कर ध्यान करते करते भंवर गुफा में जाए, अमित रस आएगा। भंवर गुफा में बैठकर अमी रस जोग जोग, ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। भंवर गुफा में बैठकर अमी रस जोग, ऐसा सतगुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। क्या रोकम रोक सौदा नहीं हुआ? भंवर गुफा का नाम तो अभी सुना, लेकिन भंवर गुफा का रस जिसको आया वो हाथों पर करो आ गया। ऐसा सद्गुरु मिल गया सौदा रोकम रोक। अजब नगर में ले गया हमको सद्गुरु आन। कबीर के शिष्य गरीब दास बोलते, अजब नगर में ले गया हमको सद्गुरु आन। झलके बिंब अगाध गत सुते चादर तान। अब तो अगाध शांति और माधुरी रस अंदर पी रहे, चादर तान के सोए हैं, तभी भी वही विश्रांति और शांति। ध्यान लगा तब तो लगा, लेकिन ध्यान करते करते तो ध्यान का रस जिनको मिल गया, लेटे लेटे भी उस ध्यान के रस में चादर तान के लेटे। लोग समझते सोया है, लेकिन योग निद्रा में खोया है।